لیکن وہ راضی ہیں اللہ کی رضا میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ سمجھ لیں یہ گریجویٹس ہیں, یہ گریجویٹ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, کیونکہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہر دکھ ہر تکلیف سہنے کو تیار ہو گئے تھے. دیکھیں ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ایمان لائے تو کیا ہوا تھا, کوئی میڈل پہنائے گئے تھے ان کو, لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا, لڑکے ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے اور گھسیٹتے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں. سوچیں ایک آپ کے سامنے کبھی یہ منظر آئے, سوچیں امیجن کریں, آپ سڑک پہ باہر دیکھتی ہیں اور کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے, کس بات کے اوپر؟ یہ ایمان لایا, اور اس کا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ چٹان اپنی جگہ سے ہل جائے مگر اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. شام کو یہ ہوتا تھا سارا دن دھوپ میں اس طرح سے لوہے کی ذرا پہنا کے, لوہا سوچے تاکہ اتنا گرم ہو جائے, وہ پہنا کے لٹایا جاتا تھا, اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے سینے پہ, اور شام کو لڑکے اس طرح گھسیٹتے تھے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے, ام انوار کے غلام تھے, وہ اسلام لائے تو ام انوار نے لوہا گرم کر کے نا تو ان کے سر پہ رکھا کرتی تھی, لوہے کی سلاخیں ہوتی تھی, سوچے ذرا لوہے کی جب وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتی تو لے کے تو ان سے ان کا سر داغتی تھی. ایک دفعہ جب عمر نے ان کی یہ کمر دیکھی تھی تو کہا تھا کہ آج تک میں نے ایسی پشت کبھی نہیں دیکھی, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کافروں مجھے کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور وہ میری چربی جو تھی کمر کی وہ پگھلتی تھی تو اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے. سبحان اللہ, اتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. اگر سمیہ کو دیکھیں, عورت ہیں, عورت مردوں کی تو بات چھوڑیں, عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کوئی تکلیف برداشت کرنا. ارے دھوپ میں ان کو بھی لٹا دیا کرتے تھے باندھ کے, تو ایک دن ان کو ایسے لٹایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا صبر کرو صبر, تمہارا ٹھکانہ جنت میں. لیکن ابو جہل کو اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی تھی کہ بس اتنا ہی, کوئی بات نہیں, اتنی تکلیف کافی ہے. اس نے برچھا لے کے نیزہ لے کے اور ان کی شرمگاہ میں مار دیا تھا, اور وہ بھی ایسے ہی نہیں, ایک ٹانگ باندھی تھی ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری دوسرے اونٹ کے ساتھ, اور دونوں کو اپوزٹ سائڈ پہ چلایا تھا اور پھر برچھا مارا تھا. اور یہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی تھی. حضرت عمر کی بہن دیکھیں, جب اسلام لائی ہیں تو حضرت عمر کو پتا چلا تھا تو ان کو اتنا مارا تھا کہ ان کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کچھ کرنا ہے کر لو, میں اسلام لا چکی ہوں. ایسے ہی نہیں قرآن ان کو کہتا السابقون, السابقون السابقون اولئک المقربون, سب قتل جانے والے ہیں, یہ سب قتل جانے والے یہی ہیں مقرب. انہوں نے مال کی قربانی دی, انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی, انہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی. پھر دنیا جہان کی خوشیاں ان کو مل گئی, جان کی قربانی دینے کا وقت آیا تو ایسے خوش ہیں, خوش ہو کے گردنیں کٹوا رہے ہیں, جیسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندہ رہنے میں نہیں ہے, موت میں ہے. اور بدر اور احد کے شہیدوں کے حالات آپ پڑھیں تو صحیح, ایمان لانے کے بعد ان کے حصے میں کیا آیا سوائے دن رات کی مصیبتوں کے, اور کیا تھا؟ تو اسلام کو تو فتوحات بعد میں ملی نا, اسلام کو تو غلبہ بعد میں ملا. یہ لوگ تو صرف جتنا ان کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں تو وہ مصیبتیں ہی برداشت کرتے رہے, لیکن پھر بھی ان کے دل خوش تھے, اطمینان سے تھے, سکون کے ساتھ تھے. ایسے وہ اپنی جانیں دے رہے تھے جس طرح کہ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. جنگ احد میں دیکھے سعد بن ربیع کو, لوگوں نے دیکھا زخموں سے چور ہے, سانس ٹوٹ رہا ہے, کسی نے پوچھا کوئی وصیت کرنی ہے, فرمایا اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم سے کہنا کہ ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دینا, یہ ہے آخری وصیت. عمارہ بن زیاد کو دیکھیں, زخموں سے چور ہیں، جان کنی کی حالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سرحانے پہنچ گئے، فرمایا کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے تو کہو، تو ہمیں اپنا زخمی جسم نہ گھسیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا اور اپنا سر مبارک آپ کے قدموں پہ رکھ دیا اور فرمانے لگے اگر کوئی آرزو ہو سکتی تھی تو بس یہی ہے کہ میرا سر آپ کے قدموں میں ہو. اس وقت بھی شکایت نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے جانے دے دی، ہم نے یہ کر دیا اور ہم کیا کریں، ہم نے گھر چھوڑ دیا اور اب کیا کریں، ہم لڑنے بھی چل پڑے، ہم نے گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، کام دھندے چھوڑے، فیملیز چھوڑی، اب اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. عورتوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ہسبینڈ بھی، بھائی بھی، باپ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں یہ ہوا تو ہوا لیکن یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. اور ان کے اوپر نظر پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. عہد میں کیونکہ یہ پتا چلا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی کہ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے سب کچھ چلا جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے. آج تو ہم سے کوئی بھی قربانی نہیں مانگی گئی، ایسا تو کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے. اللہ معاف کرے کوئلوں پہ کسی کو نہیں گھسیٹا جا رہا، اللہ معاف کرے کسی کے سر کے اوپر لوہے کو گرم کر کے نہیں داغا جا رہا اس کے سر کو، لیکن پھر بھی ایمان کا لیول کیا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ کون سا وقت کتنا اچھا ہوگا نا کہ ہمارے پاس جب مال وغیرہ آ جائے گا ہم یہ ان رزق روزی کے دھندوں سے نکلیں گے تو ہم آرام سے اللہ اللہ کریں گے، مطلب یہ معاش کی ہمیں فکریں نہیں ہوں گی اور یہ نہیں ہوں گی تو ہم آرام سے اللہ اللہ کیا کریں گے. پھر ابھی تو مطلب ہے نا اتنی غربت تھی، فقر و فاقہ بھی تھا، محتاجیاں تھیں، تو ظاہر ہے یہ ایک فکر رہتی تھی. تو جیسے انسان کے ذہن میں ہوتا نا ہاں میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو چلو پھر مجھے یہ فکریں نہیں رہیں گی پیسوں کی طرف سے، میں آزاد ہو جاؤں گی، پھر میں آرام سے اپنے دین کے اوپر کانسنٹریٹ کروں. تو آپ سے نہیں، ایک وقت مال اور دولت تو بہت آ جائے گا لیکن دین نہیں رہے گا. اس میں لوگ اتنے دنیا کے پیچھے ایسی اس کی محبت کے اندر دیوانے ہو جائیں گے کہ اس دین سے ہی دور ہو جائیں گے. وہ وقت آ گیا نا، آج تو کوئی بھی تکلیف نہیں لیکن دنیا کی محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے قربانی، اس کو قربان کرنا، تھوڑے سے نفع کو بھی، کہ تھوڑا سا فائدہ بھی میں اپنا قربان کروں، تھوڑی سی بھی میں مشکل اٹھا لوں، وہ نہیں ہے میرے اندر حوصلہ. کیا کسی نے انگاروں پہ یا کسی نے دھوپوں میں لٹانا ہے؟ ہم سے تو اتنی سی بھی قربانی نہیں دی جاتی کہ تھوڑا سا وقت ہم قربان کرتے، گھر کے تھوڑے کام ہی پیچھے کرتے، گھر کی صفائیاں ستھرائیاں تھوڑی کم کر لیں. ہم سے تو اتنی قربانی نہیں دی جاتی، آپ ہم سے اور قربانیاں مانگتے ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے ایمان کا لیول پھر دیکھ لیں سبحان اللہ کیا ہے. اللہ آگے دیکھیں. تو وہ کہتے تھے، جب ان سے یہ کہا جاتا تو وہ کہتے، ان کا جواب کیا ہوتا سوچیں، وہ کہتے تھے قالو، اب یہ منافق کہہ رہے ہیں کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف. کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ الناس کو. ان کے جیسا تھا نا، ان کے جیسا ایمان لاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کما آمن الناس، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے لوگ ایمان لائے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. دیز فنیٹکس، فولز، جیسے ہم کہتے ہیں دیز ایڈیٹس، ऐसी बात करते हैं ना, वो इस सेंस में सुफहा है ये, यहाँ पे फनेटिक एक्सट्रीमिस्ट, ये तो फूल है, ये तो बेवकूफ है, ये ऐसा ही मान लेकर है, इनको ना कोई अपनी दुनिया की परवाह, ना कोई अपनी इनको माल की परवाह, ना अपने बच्चों की परवाह, उधर से घर छोड़ के आ गए, यहाँ पे आके बैठ गए, लो अब ये जनाब ये इनका दीन है, लो ये कोई बात है? आखिर इंसान को अपनी दुनिया भी देखभाल के चलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, खुद अपना नफा नुकसान का ख्याल करना चाहिए, सारे खतरे मोल रहे हैं। जब इनको बुलाओ जंग के लिए, चलो फौरन हाजिर हो जाते, जब इनको कहो माल लेकर आओ, फौरन लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर देते हैं, ये भी कोई बात है? ऐसे हम ये इस तरह की बेवकूफियां करें, हम ऐसे फनेटिक हो जाएं, आप तो कहते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट ही बन जाएं, ना बाबा हम नहीं इस तरह का ईमान ला सकते, आप हमें ऐसा चाहते हैं? अगर इंसान को अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तो नहीं कि सब कुछ ही बस हर वक्त बस तैयार खड़े हैं, जान मांगो जान दे दी, माल मांगो माल दे दिया, वो ये जगह छोड़ दो जगह छोड़ दी, घर बार छोड़ दो घर बार छोड़ दिया, और ऐसे बन के बैठ जाए, ये कौन सा दीन कहता है? कौन सा दीन ये कहता है? कौन सा इस्लाम ये कहता है? हमारी ये बातें होती है ना, वो भी ऐसे ही कहते थे, जाहिर है बजाहिर देखने में, बजाहिर देखने में जिसको आखरत पर ईमान ना हो ना, तो उसको तो बजाहिर देखने में ये बेवकूफी लगती है, उसको तो यही लगता है कि ये तो नुकसान कर रहे हैं अपना भाई, लेकिन जिसने इस दुनिया की हकीकत को पहचान लिया हो ना, ये दुनिया तो आरजी है, अगर कल की बजाय आज खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो खत्म ही हो जानी है, यहां से तो मुझे जाना ही है, कल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चली जाऊंगी, असल बात यह कि मेरी आखिरत बन जाए, मैं वो ना गंवा दूं। अब ये अन्नास इस तरह सोच रहे हैं, और ये इनको इनको सिर्फ सामने दुनिया नजर आती, इनका मर्ज क्या था मैंने आपको बताया था ना, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, अब वो सिर्फ दुनिया को जो सामने देख रहा है, और अल्लाह ताला ने क्या मुत्तकीन की अलामत बताई थी, जरा पीछे देखें, पीछे जाए और देखिए आयत नंबर 4 में, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, उनको तो यकीन है आखिरत पे, इनको थोड़ी यकीन था, अगर इनको यकीन हो मुत्तकी ना बन जाए, तो ये यकीन की कमी है ना, अब यकीन जब है ही नहीं है कि आखिरत है वहां पे जाना है, मैं उसको नहीं गिव अप कर सकती, यहां से नुकसान हो वो भले होता फिर, अब मैं इसकी खातिर जो है ना उसको गंवा दूं, ये नहीं मैं कर सकती, तो वही जाहिर है कुछ लगाएगा ना, वही यहाँ के नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है और उसको आखिरत का यकीन नहीं है, वो कहेगा ये बेवकूफी है, बेवकूफी है कि आप ऐसी चीज के ऊपर जिसने को ना देखा ना सुना ना किसी ने आके कोई बताया वहां से आके कि भाई वहां पे एक जन्नत है, उसके लिए आप ये सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जब आएगी तो देखा जाएगा भाई, अभी क्या करने की जरूरत है, अभी तो हमारे ये मसले हल हो जाए ना, कोई हमारा ये मसला है, कोई रोजगार का है, कोई फलां चीज का है, कभी तिजारत का है, कभी हमारे अभी फल पक रहे हैं, बाग है, खड़ी फसलें हैं, ये है वो है, अभी तो हमारे ये मसले मसाइल हैं, अब हम इनको ना तवज्जो दें तो हम आखिरत कर लेके बैठे, वो पता नहीं कब आनी है, तो जब आएगी तो जहां दूसरे जा रहे होंगे हम भी चले जाएंगे, कुछ फेमिलियर लगती है आपको ये बातें, कभी सुनी है कि नहीं सुनी, या आज ही सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो उनको कहा ये नहीं गया कि कमा आमन सादिकून कमा आमन मुमिनून, उनको कहा गया कमा आमन अन्नास, क्यों ये कहा गया, इसलिए अन्नास कहा गया कि जैसे लोग ईमान लाए हैं, यानी तुम भी ला सकते हो, देखो वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं ला सकते, तुम नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो, और देखिए एक पॉजिटिव बात, सुभान अल्लाह, कहने वाले जो हैं ये नहीं बताया कौन कह रहे हैं, जाहिर है अच्छे जो ईमान वाले थे पक्के ईमान वाले वही कह रहे हैं ना, तो जब उनसे कहा जाता है तो फिर वही कहते हैं, अच्छा कहने वाला ये नहीं कह रहा और तुम्हारा तो कोई ईमान ही नहीं है, जाओ जाओ ये ईमान ये तो अल्लाह को कबूल ही नहीं है, उनसे कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ जैसा ये लोग ईमान लाए, कितनी पॉजिटिव बात है ना इसमें। सुभान अल्लाह, बताने वाले की तरफ से सोचे कितनी पॉजिटिव बात है, वो नेगेटिव में नहीं जा रहा, तुम्हारा ईमान कबूल ही नहीं है। अगर ये कह देता तो नेगेटिव बात होती, ऐसा ईमान ये क्या कबूल होगा। अच्छे तुम कलमा पढ़ने वाले हो, उसके बाद ये करते हो और ये करते हो, हमारे तो फौरन ये फतवे होते हैं ना। अच्छी तुम कुरान पढ़ने वाली हो और ये करती हो ये करती हो, हम नेगेटिव में बात करते हैं, और इन्होंने कैसे बात की है पॉजिटिव। ऐसा ईमान लेकर आओ, और तुम कर सकते हो। देखो लोगों ने भी तो किया है और लोग भी तो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो तो बेवकूफ है, हम थोड़ी बेवकूफ, हम अपना सारा कुछ ही लगा दें अब यहाँ पे, हमसे नहीं इतना होता। राज भी कहते हैं तो इनका क्या काम है, काल का कहते हैं, काल तुम तो पागल ही हो गए इनके पीछे लग गए छोड़ छाड़ के सारी, काल का किसको पता है, बस इनका काम डरा डरा के लोगों को मारा हुआ है बस, और इनका कोई काम नहीं है। हम कोई बेवकूफ है कि हम इस तरह से चलें, हमें देखभाल के चलना है, आखिर हमें यहीं पे रहना है। हाँ यही तो मसला है कि हमने ये सोचा था कि हमने यही रहना है, जिस दिन ये पता चल गया ना हमें यकीन आ गया कि यही नहीं रहना, यहाँ ही नहीं रहना, तब मसले हल हो जाएंगे, तब सारे काम सीधे हो जाएंगे, मगर हमने ये सोचा था हमने यही तो रहना है। तो वो कह रहे हैं कि इस, अच्छा अब उनकी बात जो है ना सुफहा वाली बात है, इसको सोचे इस तरह से है कि जैसे कोई आपको आके आपके घर में कोई आके कहे कि मैंने भाई एक जगह जमीन की पेमेंट कराए हूँ, एक घर की पेमेंट करती है, कौन से घर की आप पूछे, तो कहें वो बस एक घर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, बहुत ऐसे वैसे, इतनी उसकी तारीफें करें। अच्छा वो घर है कहाँ पे, किधर मिलेगा, किस शहर में है, ये नहीं मुझे पता, उसका एड्रेस क्या है ये भी नहीं पता। अच्छा तो कोई रास्ता होता है जाके देख के आए किधर बन रहा है वो, अब वो भी नहीं बता सकते, कब मिलेगा वो, अभी तो नहीं मिलना वो, तो पता नहीं अभी 30-40 साल बाद मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या बेवकूफी है, तुम्हें तो कोई किसी ने लूट लिया ना? आम लोग ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए वो ये कह रहे हैं ये सुफहा है, क्योंकि सहाबा करम अपना घर किधर बना रहे हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं कोई बता सकता, जाके देख के भी नहीं आ सकता है ना, और कब मिलेगा ये भी पता नहीं, जब तक जिंदगी है उसमें तो नहीं मिलना, मौत के बाद ही मिलेगा। तो वो कह रहे हैं ये बेवकूफ है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब वर्डिक वहां पे भी दिया गया आयत नंबर 12 में, अल्लाह ताला ने वर्डिक दे दिया कि यही लोग हैं जो मुफसिद हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, इनका फैसला सुना दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये उनको बेवकूफ कहते हैं, असल बेवकूफ ये हैं, इनको कल को पता चलेगा कि असल घाटे में कौन रहा, असल बेवकूफियां किसने की, जिसने दुनिया को छोड़ के आखरत के ऊपर अपना सब कुछ लगा दिया, या जो दुनिया में ही सब कुछ लगाता रहा, तो सब पता चल जाएगा वहां पे जाओगे तो, ये कौन था अकलमंद और कौन था बेवकूफ कि जब इंसान से पूछा जाएगा कम लबिस तुम कितना ठहरे, तो कहेगा लबिसना यौमन औबादा यौम, मैं तो एक दिन दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरा था, तो इतनी थोड़ी देर के लिए ठहरे, उसके लिए तुमने सब कुछ लगाया, सारी मेहनत सारी कोशिश सारी अपनी एनर्जी सारा अपना इल्म सारा अपना पैसा उसी को बनाने संवारने में लगाती रही, सारा अपना टाइम जिंदगी के कीमती लम्हात अपनी जवानियां सब कुछ उसके लिए लगा दिया, अपनी औलादों को हर चीज को उसी के नाम कर दिया उस दुनिया के, वो तो खत्म हो गई है, वो तो आई नहीं यहाँ पे, तो बेवकूफ कौन है वो जिसने आज के लिए मेहनत की और जन्नत पाली, या वो जो उसके लिए मेहनत करता रहा जो कि जमीन इजा जुलजिलातिल अर्द जिलजालहा, जो जमीन को ऐसे जुलजिले इतनी जोर से इसको हिलाया जाएगा, ये तो रेजा रेजा हो जाएगी, ये तो पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, उसमें तुमने घर बनाए थे वो जो तबाह हो जाने वाली थी उसमें तुमने जायदादें मनाई थी, उसमें तुमने मेहनतें की थी, वो तो उसी टाइम के लिए तो ठीक था, तुम्हें उतना ही करना चाहिए था जितना उसमें रहना था। ये तुम उसी में बनाते गए बनाते गए, उसने तो खत्म हो जाना था, तुम्हें बताया नहीं गया था। तो वो तो आखिरत में तो कोई जमीन का नामो निशान भी नहीं, किधर जाएंगे किधर से लेकर आएंगे, वो तो रह गई पीछे, वो तो खत्म हो गई। अब खाली हाथ खड़े हैं, तो बेवकूफ कौन बने फिर? अला इन्नहुम हुमुस्सफहा वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको इल्म ही नहीं, इनको पता ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी जिहालत है, ला इल्म होना क्या होता है, जिहालत, सबसे बड़ी जिहालत यही है। और देखिए पहले आया कि वो उनको शऊर नहीं है। शऊर क्या चीज होती है? इंसान को इस बात का तो पता होना, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, फसाद क्या है, इसलाह क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, समझ हो उसको, ये समझ हो। लेकिन उसमें वो बिल्कुल बेशऊर है, समझ से खाली है। और यहां पे क्या, इल्म से खाली है, जाहिल है। जाहिल को यही नहीं पता, इसको इतना इल्म ही नहीं है कि इसने खत्म हो जाना। और मेरी बेवकूफी है कि मैं सब कुछ इसी के नाम कर रहा हूं। और फिर अगली बात इनकी देखिए, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, और जब ये मुलाकात करते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम भी आपके जैसे ही हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए। وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, और जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों के पास, कौन है इनके शैतान? वो जिन शैतान नहीं, यही जो इनके बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े लीडर हैं मुनाफिकीन के, तो जब उनके पास जाते हैं वो कहते तुम बड़े मिल के बैठ रहे हो मुसलमानों के साथ, मैं तो तुम्हें देखा था बहुत तुम उनके साथ खुश खुश घूम रहे थे। तो कहते हैं कालो इन्ना माकुम, हम आपके साथ हैं, इन्ना मा नहनु मुस्तहजिउन, हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं, वी आर जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे थे हम उनके साथ, हम तो उनके साथ बस दिल बहला रहे थे, हम दिल से थोड़ा ही उनके साथ हैं। भाई रखना पड़ता है ना, क्या करें, आपको पता है ना, फिर करना पड़ता है, तो उनको भी राजी रखना पड़ता है। ये जो दीन वाले ना, इनके साथ भी थोड़ी रखनी पड़ती है, असल में हम थोड़ी उनके साथ है, जाने दो, कोई तो पागल है हम इनके साथ होंगे। तो यहां से आपको क्या पता चला, कैसा होता है मुनाफिक? डबल फेस, फेस नजर आ रहा है, एक तरफ एक चेहरा है, दूसरी तरफ दूसरा चेहरा है, एक तरफ एक तरह से जाता है, दूसरी तरफ दूसरी तरह से जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन शख्स, वर्स्ट पर्सन, वर्स्ट, वो है जो दो रुखा है, दो डबल साइडेड, किसी के सामने एक रुख होता है और किसी के सामने दूसरा रुख होता है। बाज लोग जाते हैं ना एक मजलिस में, कोई दीन वाली मजलिस में जाएंगे तो वहां पे इतने दीनदार की जैसे हमसे ज्यादा कोई दीनदार ही नहीं, फिर उनको कहीं और देखा तो कहते हैं अल्लाह अकबर, ये वही है, ये वही बंदी है, ये हाल हुली है, ये इसके चाल चलन, ये इसके तरीके, ये वही बंदी है। बस जी मजलिस मजलिस का फर्क है, वहां पे कोई और मजलिस ही तो वैसा भेस बना लिया, यहाँ पे कोई और मजलिस है तो फिर उठ के वैसे ही शुरू हो गए उस तरह के काम करने। तो डबल फेस है, हर एक के लिए एक फेस रखा हुआ, इनको राजी करने के लिए इनके जैसा फेस है, उनको राजी करने के लिए उनके जैसा फेस है। इधर की तरफ आते हैं, दीन वालों में बैठ गए तो दीन की अपनी कहानियां बता दी, हाँ, और वो उधर दूसरी तरफ गए तो उनको उस तरह की कहानियां बता दी अपनी, उनमें दीन की बैठ के कोई बात नहीं करनी, वो फिर माइंड करेंगे। और इनकी तरफ आकर कोई दुनिया की नहीं ऐसी बात करनी, कोई इधर उधर की जो फन हम करते रहते हैं इधर उधर, वो नहीं करनी, क्योंकि फिर देखिए ना इनके साथ कैसे बनेंगे। तो इनके लिए इनकी तरह की उनकी थी बात, समझ आ गई बात? अच्छा एक और बात यहाँ पे नोट करें कि ये मुनाफिकीन के नाम तो किसी को पता नहीं थे, तो ये मुसलमानों में इसी तरह रहते थे जैसे दूसरे मुसलमान रहते हैं, मुसलमान ही कहलाते थे। तो आप जरा सोचिए कैसी सोसाइटी है वहां पे, जिसमें एक तरफ तो हज़रत उमर हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, तली हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और उन जैसे और हैं सहाबा, और दूसरी तरफ ये मुनाफिकीन भी हैं, ये भी तो मुसलमान ही कहलाते थे, ये तो सहाबा ही थे ना, ये कहलाते होंगे। तो ये कोई ना समझे कि उस दौर में भी सारे ऐसे ही थे जैसे हजरत अली और हजरत उमर और इनके इमाम थे, वहां पे भी मिक्स लोग थे। हाँ ये जरूर है कि मेजोरिटी जो थी वो सही थी और ये माइनॉरिटी में थे, मगर वहां पे भी मिक्स सोसाइटी है, हर एक का ईमान एक जैसा एक लेवल का नहीं है, हर एक अबू बकर सिद्दीक नहीं है, हर एक उमर नहीं है, हर एक अबू उबैदा बिन जराह नहीं है, हर एक हुज़ैफ़ा बिन यमान नहीं है। लेकिन अगर ये देख के कोई ये कह देता कि बड़े देखे हैं मुसलमान, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी बैठ के ऐसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन इनका था ना काम कि झूठ बोलते थे मुनाफिकीन, और इनका काम था ये बेईमान थे, तो यही तो हमने देख लिया, बड़े मुसलमान बेईमान होते हैं, और हमने देख लिया ये तो वादा खिलाफ होते, मुनाफिक वादा खिलाफ भी थे। अब किसी को थोड़ी पता ये मुनाफिक है, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, अब हमें तो हमें भी नहीं पता कि उन सबके नाम क्या थे। तो अगर कोई उस वक्त कहता कि हम क्यों मुसलमान हो, बड़े देखे हैं हमने मुसलमान, वो तो ऐसे हैं, और या कोई कहता हम क्यों अमल करें, हम क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े देखे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं और वो ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये मुनाफिकीन बैठते थे आपकी मजलिस में। तो सोचिए ना, अगर उस वक्त भी कोई ऐसा कहता जैसा आज लोग कहते हैं, बहुत देखे हैं कुरान पढ़ने वाले, वो तो अमल करते नहीं है, तो हम फिर क्यों पढ़े, यानी उनको पढ़ने का इल्म लेने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो हम क्यों फिर इल्म लें, हम तो नहीं सीखेंगे। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सारे पक्के मोमिन नहीं थे, तो आज कहां से आपको ऐसा मिलेगा कि हर एक पक्का मोमिन हो तो तभी आप दीन की तरफ आएंगी, और आप इस चीज का इंतजार करती हैं, तो ये चीज तो वो बेस्ट ऑफ द टाइम्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जमाना सब बेहतरीन जमाना है, यानी उस वक्त लोग बेस्ट थे, उस वक्त के जो लोग थे। तो अगर उस टाइम में भी मुनाफिकीन भी बीच में नजर आते हैं, तो आज फिर क्या हाल है, आज तो मेजोरिटी हमारी किस हाल में, ईमान किस किस लेवल पे है, तो आज कहां से आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोग तो फिर अब अपने ईमान की खैर मनाएं और अपने अमल की खैर मनाएं, क्योंकि तो फिर तो कभी भी वो अमल नहीं कर सकते, अगर वो इस चीज का वेट करते रहे कि हाँ सारे बाअमल हो जाएं, सारे पक्के मुत्तकी हो जाएं, तो तब मैं कहीं दीन की तरफ आऊंगी। तो ये अच्छा बहाना अगर किसी ने घड़ा हुआ है, तो फिर तो वो इंतजार ही करता रहे, क्योंकि ऐसा तो जमाना नहीं आने वाला। अगर वो जमाना ऐसा नहीं था, तो आज तो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलेगा ऐसा जमाना। आज तो मुनाफ़िकत अपने उरूज पे है। तो ये बहाना छोड़ के कोई और फिर बहाना ढूंढे, क्योंकि ये इसके अंदर तो कोई कोई ये इसका फायदा नहीं है। तो अब ये लोग ऐसे क्यों करते थे कि मुसलमानों के पास जाके कह रहे हैं हम ईमान लाएं, इतनी उनको क्या मुसीबत पड़ी थी, एक तरफ क्यों नहीं हो जाते थे? इसलिए कि मैंने आपको बताया था ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वो देख रहे थे कि नेक्स्ट राइजिंग एम्पायर जो है वो मुसलमानों की है, अगला दौर इस्लाम का ही होने वाला है। जैसे आप देखते हैं कोई पार्टी हुकूमत में आने वाली हो, तो लोग पहले पहले उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, भाई ये पावर में आने वाली है, इनके साथ मिल जाएंगे तो कल हमें भी पावर मिलेगी। तो उनसे कहा गया नहीं भाई ऐसे नहीं है, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो तुम दिखाओ फिर अपना ईमान, इन मुहाजरीन की तरह इन अंसार की तरह ईमान ला के दिखाओ, तब पता चले। तो लेकिन वो तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो अकेले में तो ये कह रहे हैं कमा आमन सुफहा, लेकिन उनके सामने नहीं जाके कह रहे कि तुम तो सुफहा हो, उनके सामने कह रहे हैं आमन, हम भी ईमान लेकर हैं, हम भी आपके जैसे हैं। देखा ऊपर से क्या है और अंदर से क्या। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आप पहले तिलावत सुने, इन आयात को गौर से देखें, एक एक वर्ड को देखें, सोचें कि मुझे इसमें क्या बात समझ आई है।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين